विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। हरे कृष्णा। तो जो ये श्लोक है, इस श्लोक में सृष्टि का रचना के बारे में वर्णन किया गया है। अधिकतर लोग प्रश्न पूछते हैं, सृष्टि की रचना हुई तो हुई कैसे? साइंटिस्ट कहते हैं कि संसार में सृष्टि की रचना हुई कि सारी चीजें मैटर से बनी, मैटर पदार्थ से वस्तु में जीवन आया। पहले काई जमी हुई थी और काई से जीवन आ गया, अचानक से जानवर आए, पहले जल के जीव आए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे प्रकृति बढ़ने लगी और मनुष्य, पहले वन मनुष्य बना और उसके बाद में मनुष्य बना। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रकृति शिष्य रुक्मणी द्वारा आदेश की, इस संसार में जो कुछ भी अभिव्यक्ति है उसके बारे में अगर कभी किसी को पूछना हो तो भगवत गीता के 14 अध्याय के तीसरा श्लोक, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, गीता के 14 अध्याय के तीसरे श्लोक में वर्णन किया गया है। कोई भी व्यक्ति इसको खोल करके पढ़े तो उसे पता चलेगा हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से? सब लोगों को बोलना है 24। क्या क्या है इसके अंदर जरा काउंट करिए। काउंटिंग सबको आती है? बैठ जाइए आपके साथ, काउंटिंग करना है सबको, ठीक है? 5 ज्ञान इंद्रियां। क्या है 5? कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां है? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। 5 ज्ञान, इनसे ज्ञान मिलता है। आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुन पाते हैं, जिह्वा से स्वाद चखते हैं और इससे स्पर्श करते हैं ठंडा है कि गर्म है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इसके विषय होते हैं। आंख का विषय है सुंदरता, नाक का विषय है सुगंध खुशबू, जीभ का विषय है स्वाद, कान का विषय है अच्छी वस्तु सुनना और स्पर्श करना अच्छी वस्तुओं का। तो स्पर्श विषय है ये हमारी त्वचा, आंख का विषय है देखना, नाक का विषय है सूंघना। इस प्रकार से हर एक के 5 विषय वस्तु, 5 और 5 कितना हुआ? 10। 5 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। कौन कौन सी कर्म इंद्रियां हैं? 2 हमारे हाथ, 2 पैर है? और 1 हमारा उदर पेट, और 2 हमारे ज्ञान, हमारे जननेंद्रियां जहां से हम बच्चे पैदा करते हैं, और 1 हमारा मल विसर्जन का स्थान। इस प्रकार से कर्म करने के 5 स्थान जहां से हम कर्म करते हैं, हाथ से कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं, पेट में खाना डालते हैं, पूरे शरीर में शक्ति आती है, बच्चे पैदा करने के लिए कर्म करते हैं जननेंद्रियों से, और मल त्यागने की इंद्रिय से मल त्यागते हैं शरीर का। तो इस तरह से 5 कर्म इंद्रिय, तो कितनी हो गई? 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 विषय, 5 कर्म इंद्रिय, कितनी हो गई? 15। 5 हमारे हो गए तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील। 5 तत्वों से बना शरीर, पंच तत्व से बना शरीर, पंच तत्व में मिला शरीर, 5 तत्व। जब शरीर का अंतिम संस्कार होता है तो उसमें से जब शरीर को अग्नि दाह किया जाता है तो उस शरीर की अग्नि जलाने पर अग्नि तत्व अग्नि में प्रवेश कर जाता है, और जो वायु तत्व होता है वो वायु में प्रवेश करता है, आकाश तत्व आकाश में प्रवेश करता है, और जल तत्व अंत्येष्टि करने पर सभी वो वहां पर पड़ी हुई राख को उठाकर विसर्जन करता है यमुना आदि नदियों में, तो वहां पर क्या होता है? जल तत्व जल में प्रवेश। इस प्रकार से पंच तत्व पंच तत्वों में प्रवेश कर जाए, तो ये कितने हो गए? 20 तत्व हो गए। अब यहां पर चर्चा हो ये 24 तत्वों की, तो 3 तत्व है सूक्ष्म तत्व जिनको कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। अब ये सूक्ष्म तत्व हमारा शरीर त्यागने पर दूसरे शरीर में चला जाता है, और चौथा तत्व जो है, 24वां तत्व, वो है आत्मा। इसी को यहां कहा गया है ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। अगर आत्मा ना हो तो ये 23 तत्व किसी काम के नहीं। 24वां तत्व जो है आत्मा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और एक 25वां तत्व है जिसे कई बार 24 तत्वों में काउंट कर लिया जाता है, कभी 25 तत्वों से अलग कर लिया जाता है, गुण, जिन गुणों से आप बंधे हुए हैं। जैसे अभी दशहरे के समय रावण के बड़े बड़े जो पुतले जलाए जाएंगे तो उनको रस्सियों से बांध के खड़ा किया जाता है, कि देखा है आप कठपुतली का नाच? देखा कितने लोगों ने देखा कठपुतली का नाच? हाथ खड़ा करके बताइए। तो बंदी होती है, तो जब वो नाचती है तो पता नहीं चलता कि नचाने वाला कौन है, दिखता है कौन नचा रहा है। एक फिल्म में तो डायलॉग भी था, याद है किसी को? एक फिल्म थी उसमें डायलॉग था कि हम सब तो कठपुतलियां हैं ऊपर वाले के हाथ, न जाने कब कट जाए। तो कठपुतलियों की तरह से हम भी तीन गुणों में बंधे हैं, जिसको कहते हैं गुण तत्व, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अब यहां पर वर्णन है इस श्लोक में कि व्यक्ति का जन्म जो होता है, अगला जन्म, वो उसके गुणों के संग के कारण होता है। जैसे करोगे संग वैसा बनेगा धन। सतोगुणी व्यक्तियों का संग करोगे तो सतोगुणी शरीर मिलेगा, रजोगुणी व्यक्तियों का शरीर संग करोगे तो रजोगुणी शरीर मिलेगा, तमोगुणी व्यक्तियों का संग करोगे तो तमोगुणी शरीर मिलेगा। सतोगुणी कैसे होते हैं, रजोगुणी कैसे होते हैं, तमोगुणी कैसे? तमोगुणी लोग आलसी होते हैं, बहुत ही आलसी। सुबह सोएंगे 10-10 बजे तक, सूरज निकल आता है उसके बाद भी उठने का मन नहीं करता। बोलो ना उठ जा, उठने का मन नहीं करता। आज तो संडे है, आज तो सोने का डे है, आज तो संडे है, छुट्टी का डे है, संडे। तो ये जो छुट्टी का डे बनाते हैं, आलस में पड़े रहते हैं, सच्चाई देखी जाए तो ये कौन है? तमोगुणी। इन लोगों को गाने भी अज्यादा पसंद होते हैं, उठेंगे उसके बाद तेज गाने लगाएंगे, अजीब प्रकार के गाने बजाएंगे। ये जब खाना खाएंगे तो अजीब प्रकार का खाना खाएंगे, बासा खाना खाएंगे, फ्रिज में रखा हुआ खाना निकालेंगे, 11 बजे कौन कुकिंग करेगा, बासा खाना खाएंगे, खाने की प्रवृत्ति भी बदलेगी। ऐसे व्यक्ति उन लोगों के साथ बैठेगा जो शराब पिएंगे, शनिवार के दिन अधिक रात्रि तक मिलेंगे, शराब पिएंगे क्योंकि संडे छुट्टी है, रात देर तक सोएंगे। ये सारे तमोगुणी लोगों के लक्षण। हाँ, प्याज रजोगुण में आता है। तमोगुणी लोगों का उदाहरण है कौन? तमोगुणी का उदाहरण है रावण का भाई, कौन था? कुंभकर्ण। 6 महीने में एक बार उठता था, फिर खा पीता था, फिर सो जाता था। खाता था तो क्या खाता था? मांस खाता था, शराब पीता था, मदिरा पान करता था, जो आता था वो खाता था। ऐसा नहीं था कि भेद करता हो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो खाने में भेद नहीं करता है, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, लोग शादियों में जाते हैं, वहां पर कई प्रकार के भोजन लगे होते हैं, खाते रहते हैं। ऐसे लोग तमोगुणी लोग कहते हैं। पूछा जाए क्या भोग लगा है, किसने बनाया है, किस भावना से बनाया है, तब वो व्यक्ति सत्वगुणी में आता है, वरना वो तमोगुणी। रात रात को 2-2 बजे तक पार्टियां चलती हैं, सुबह 10-10 बजे तक सोते हैं, ये सब तमोगुणी लोग। इनका करोगे संग तो अगला शरीर मिलेगा तमोगुणी से, और ये जीवन तो खराब हो ही गया। रजोगुणी कैसे होते हैं? रजोगुणी लोग होते हैं जो हमेशा कुछ कर दिखाने की भावना से लड़ते रहते हैं। कुछ करके दिखाऊंगा इस संसार में, मैं अपने को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ हूं। जो अपने को प्रूव करने की दौड़ में लगा रहता है कि मैं कुछ हूं, वो रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति को फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं,
जब सुनेगा क्या सुनेगा? फिल्मी गाने सुनेगा। आजकल की नई फिल्म कौन सी आ रही है, लेटेस्ट फिल्म कौन सी आ रही है, ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। खाएगा तो क्या खाएगा? तीखा मसालेदार खाना, उसमें वो डाल लेगा प्याज। छोला खाओ तो प्याज, टमाटर की सब्जी खाओ तो प्याज, भटूरा खाओ तो प्याज, चौमिन खाओ तो प्याज, डोसा खाओ तो प्याज। भाई साहब से पूछो, भाई साहब आपने क्या खाया पूरा जीवन? तो सिर्फ प्याज ही खाया। राज क्या है? प्याज। राज सीक्रेट लाइफ का राज है प्याज। वो व्यक्ति जब जीवन में सच्चा प्रसाद खाता तो कहता है, अच्छा प्रभु जी मुझे मालूम नहीं था सब्जियों में स्वाद भी होता है, मुझे तो लगता था सब्जियां बेस्वाद होती हैं, प्याज ही सब्जी का स्वाद होता है। ये रजोगुण का लक्षण। सत्वगुणी व्यक्ति कैसा होता है? सत्वगुणी व्यक्ति को पसंद होता है सादा खाना, दाल रोटी, और वो भी 3 घंटे के अंदर बना हुआ, 3 घंटे से अधिक रखा हुआ नहीं। ये नहीं फ्रिज में रात को रखा हुआ आटा सुबह निकाला खींच करके और उससे रोटी बनाई और खा लिया, कल की रखी दाल माइक्रोवेव में गर्म करी, बोले जी दाल रोटी, सत्वगुणी है? सत्वगुणी नहीं। ताजा खाना भगवान के सामने रख के, गाय के सामने रख के खाना सत्वगुणी। ऐसा व्यक्ति भजन आदि कीर्तन के प्रति ज्यादा रुझान रखता है, कथा के प्रति ज्यादा। तो जैसा करेंगे संग, कारणम गुण संग अस्यो सद असद योनि जन्म सु। व्यक्ति का जन्म कैसे कारण गुण के संग उसका हुआ, उसी सोच से। अब क्या होता है, व्यक्ति बोलता है कि भौतिक संसार प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? मैटर से प्रकट हुआ। मैटर से प्रकट नहीं हुआ, जीवन जीवन से आता है। भगवान क्योंकि जीवित है, भगवान मृत व्यक्ति नहीं है, इसीलिए वो आत्मा के स्रोत है। भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, इसीलिए उनसे निकलता है सच्चिदानंद विग्रह आत्मा। परंतु भगवान विशाल है, विभू है, हम अणु हैं, छोटे हैं, लेकिन है वो। ये नहीं कह सकते कि परमात्मा, भगवान तो मर गया है, भगवान अब बचा ही नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। ये भी वही तमोगुणी लोगों की बातें हैं। जो व्यक्ति ग्रंथ पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा, उसका ज्ञान ऐसा होगा, वो जानेगा भगवान को। और जो भक्त होता है, भक्त तो इन तीनों से ऊपर है, ना वो सत्वगुणी है, ना वो रजोगुणी है, ना वो तमोगुणी है। भक्त त्रिगुणातीत भगवान की पूजा करने से तीनों गुणों को पार करके शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? शुद्ध सत्व। किसमें? शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में जो व्यक्ति होता है उसके लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व का व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे भक्त भगवान का, भगवान का नाम भजन कर। खाएगा तो क्या खाएगा? न रजोगुणी खाएगा, न तमोगुणी खाएगा, न रजोगुणी खाएगा, न सत्वगुणी खाएगा। भगवान का भक्त जब खाएगा तो शुद्ध भगवान का प्रसाद खाएगा। ना वो वेजिटेरियन है, ना वो नॉन वेजिटेरियन है, ना वो मोकाटेरियन है। कई लोग मोकाटेरियन होते हैं, तो मैंने पूछा मोकाटेरियन क्या होते हैं, बोले जो वेजिटेरियन भी होते हैं नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, जैसा मौका लगता है वैसे हो जाते हैं। मौका नहीं, तो मौकाटेरियन भी नहीं है, वेजिटेरियन भी नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है। भगवान का भक्त क्या है? कृष्णाटेरियन है। जब खाएगा कृष्ण का प्रसाद खाएगा। न शाकाहारी है, न मांसाहारी है, न मौकाहारी है, कैसा है? कृष्णाहारी है। वो है शुद्ध सत्व का, शांत स्वभाव। जब मिलेगा प्रेम से मिलेगा। और इसके ऊपर एक और, हेलो, इसके ऊपर है विशुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व के ऊपर है विशुद्ध। विशुद्ध सत्व का जो व्यक्ति है उसके अंदर यह भी नहीं है भावना कि मैं संसार के अंदर प्रचार करूं, ये भी उसके अंदर भावना नहीं है कि मैं संसार का प्रचार करूं कि तुम भक्त बन जाओ, क्योंकि उसके लिए सब समान है। वृंदावन में एक बंगला संत थे, बंगाली संत वैष्णव, तो जिसको मिलते थे उसको प्रणाम करते थे। ब्राह्मण को मिले तो प्रणाम, क्षत्रिय को मिले तो प्रणाम, शूद्र को मिले तो प्रणाम, वृष को मिले तो प्रणाम, और यहां तक कि जानवर को मिलते तो प्रणाम, गाय को मिलेंगे तो प्रणाम, कुत्ते को मिलेंगे तो प्रणाम, सुअर कीचड़ में उसको भी प्रणाम। ऐसा थोड़ी प्रभु जी, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवत गीता के 5वें अध्याय में लिखा है, जो व्यक्ति विद्या जान गया होगा, ये गीता की विद्या, विद्या विनय संपन्न, जिसकी संपत्ति होगी विद्या ज्ञान, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिने, वो ब्राह्मण में, गाय में और हथनी में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनीचा एव शपाकेचा पंडितानां समदर्शिना समदर्शिना। ब्राह्मण में, गाय में, हदनी में, शुनी, शुनी मतलब होता है जो सबसे शुद्ध जाति का है, जो मल मूत्र साफ करता है, शुनी। और शपच, शपच मतलब होता है, शपच को अगर व्याख्यान करें, शपच को दो भाग में बांटा जाए, श्वान मतलब होता है कुत्ता, और पच मतलब होता है पचाने वाला, श्वान मतलब कुत्ता, पच मतलब पचाने वाला, जो कुत्ते के मांस को भी पचा जाए उसे शुपच कहते हैं, मतलब चंडाल। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण को और चंडाल को बराबर देख सकता है वो विद्या विनय संपन्न है। विद्या विनय संपन्न विद्यार्थी व्यक्ति होगा, वो विनम्रता आ जाएगी, वो ये नहीं कहेगा अरे तुम्हारे अंदर ये कमी है, जब आप किसी पे उंगली उठाते हो तो चार उंगलियां आपके ऊपर, सुना तो मुझे क्या, जब आप किसी पे एक उंगली उठाते हो तो चार उंगली ध्यान देने वाली, आपकी ये कमी है प्रभु जी, एक तो चार तो मेरे ऊपर है, मेरे अंदर क्या कमी है? ये नहीं धोता कभी आदमी, उनके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, कमी है। आपको जज किसने बनाया? जज तो भगवान है, न्यायाधीश भगवान है, आपको जज बनाया किसने? विद्या विनय संपन्न, अगर किसी में विद्या होगी, अगर वो सचमायने में भक्त होगा, विद्या विनय संपन्न उसमें विनम्रता होगी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मण को जितना सम्मान देगा, गवे गाय को जितना सम्मान देगा, हस्ती ने हाथी को जितना सम्मान देगा, शुनी शूद्र को जितना सम्मान देगा, शपथ चंडाल को भी उतना ही सम्मान देगा। पंडिता समदर्श, पंडित जो होगा समान दर्श। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु जी शेर था जंगल में जा रहा था, मैंने समान दर्शिता से गले लगा लिया, शेर ने तो मेरा भोजन कर लिया, शेर थोड़ी समान दर्शिता कर रहा है। आपको विद्या विनय है, इसका मतलब ये है कि पत्थर लेकर शेर पर मारना नहीं है, कुत्ते के ऊपर पत्थर नहीं मारना है। विद्या विनय संपन्न का मतलब है समान दर्शिता से देखना है, लेकिन व्यवहार अलग अलग करना है। समान दर्शी है, व्यवहार समान नहीं है। उच्च भक्त के साथ दंडवत का व्यवहार, समान भक्त के साथ गले लगने का व्यवहार, आपसे नीचे वाला नया भक्त है उसको प्रचार का व्यवहार, व्यवहार अलग है लेकिन दर्शन समान, भेद है दर्शन में और व्यवहार में, भेद है। लोग इसको समझते नहीं, कुत्ते को गले लगा लेंगे, आपका क्या कहने का मतलब है? क्या कुत्ते में भगवान नहीं होता? क्या कुत्ते में आत्मा नहीं होती है? जी हमने कब कहा? समान दर्शिता है परंतु व्यवहार अलग है। कुत्ता कुत्ता है, जीव है, परंतु भगवान, तो दर्शिता समान है, भावना व्यवहार अलग। तो उसी चीज को समझाने के लिए श्लोक है कि भगवान और जीव बराबर नहीं है। भगवान इस संसार के हर जीव की प्रकृति का कारण है। एक चावल का एक बहुत बड़ा सा भंडारा, जैसे चावल का ढेर बना है, उसमें से बिच्छू निकल के आया है, चावल का ढेर है उसमें से बिच्छू निकल के आ रहा है।
तो अब क्या बताओगे, बिच्छू की उत्पत्ति का कारण कौन है?
चावल का ढेर है कि नहीं? लेकिन क्या चावल का ढेर बिच्छू पैदा करता है? कौन पैदा करता है? हाँ जी, नहीं, भौतिक संसार में देखा जाए तो कौन करेगा? बिच्छू की माँ पैदा करेगी।
बिच्छू की माँ चावल के ढेर में गई, उसने वहां अंडे दिए, बिच्छू की माँ वापस आ गई, अंडे वहीं रह गए, बिच्छू के अंडे गर्म हुए, अंडे गर्म होने के बाद वहां से बाहर निकले, बिच्छू थोड़ी देर बाद जब बच्चा बाहर आया, देखने वाले को क्या लगा? चावल के ढेर में बच्चा बिच्छू का पैदा किया। यही संसार को भ्रम है। माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं, लोग बोलते हैं भगवान को पूजते हैं, माता पिता को तो पूजते नहीं, माता पिता भगवान होते हैं। माता पिता भगवान नहीं होते हैं, माता पिता भगवान के समान होते हैं, भगवान नहीं होते। समानता में और भगवान में दोनों में भेद है। माता पिता भगवान के समान है क्योंकि इस संसार में लाने के मध्य कारण है। तो दो कारण होते हैं, एक मुख्य कारण एक गौण कारण है। गौण कारण है माता पिता, मुख्य कारण है परमात्मा। एक बार बंबई में एक भक्त थे ब्रह्मचारी, जिसे आजकल बहुत प्रचार है टीवी के द्वारा, इस्कॉन के लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, छोड़ आते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। तो इसे पूछा गया, तुमको शर्म नहीं आती हो माता पिता को छोड़ करके और तुम जो है ना यहां आ गए हो मंदिर के अंदर, भगवान की सेवा करते हो, माता पिता की सेवा नहीं करते हो? तो उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा दूसरे व्यक्ति से, कहा एक बात बताइए, माता पिता बड़े होते हैं या दादा दादी? आप लोग बताइए कौन बड़े होते हैं, माता पिता या दादा दादी? हाँ जी, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, दादा दादी बड़े होते हैं। अच्छा, अगर माता पिता दादा दादी की सेवा ना करें तो नाती का कर्तव्य है दादा दादी की सेवा करें या ना करें? हाँ जी, क्या कहते हैं, दादा दादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो माता पिता अगर भगवान की सेवा ना करें, जो मुख्य कारण है संसार का, तो नाती का कर्तव्य है कि वो माता पिता की छोड़ करके पहले दादा दादी की सेवा करें। क्या बोलते हैं? हरी बोल तो बोलते हैं। लेकिन समझ नहीं, क्यों छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? चलता रहेगा, इससे कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला नहीं है। जिसने छोड़ना है उसने छोड़ना है, जो छुड़वाने वाला है वो ऊपर वाला है, प्रकृति के नियम चलाने वाला, कठपुतली चलाने वाला वो है, जो हो रहा है वो भी उसकी इच्छा से हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। भगवान इस सृष्टि के मुख्य कारण, ब्रह्मा जी भी गौण कारण है सृष्टि रचना है। ब्रह्मा जी को भगवान महत्व देते हैं, ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, ब्रह्मा इधर आओ, अपनी नाभि से प्रकट करते हैं, नाभि के ऊपर कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं आप कौन है, कौन 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 कौन? इसको तपस्या करते करते कई करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, तब उनको समझ में आता है। आंख खुलती है एक बच्चे को अपने माता पिता को समझने के लिए कि मैं कौन हूं, किसने मुझे पैदा किया, कितने साल लग जाते हैं? एक साल दो साल बाद समझ पाता है कि मुझे किसने पैदा किया। ऐसे ब्रह्मा जी को समझने के लिए कि मुझे किसने पैदा किया कई करोड़ वर्ष बीत गए, तब वो समझ पाया। और ब्रह्मा जी ने एक रचना करी जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी ने कहा रचना के अंदर, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ने कहा सर्व कारण कारणम, सारे कारण के कारण है कृष्ण। अब बताओ ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, पागल हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, सृष्टि रचना करने वाले जी झूठ नहीं बोल रहे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्व कारण कारणम गोविंद, विष्णु नहीं बोल रहे हैं, गोविंद कृष्ण ये बोल रहे। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि ये गौण कारण नहीं है, ये मुख्य कारण है कृष्ण गोविंद, मैं इनसे प्रकट होता हूं। तब ब्रह्मा जी को कृष्ण ने कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो। बोले मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरे गर्भ के अंदर ये 24 प्रकार के तत्व हैं,
जिसको सर्ग कहते हैं। सर्ग भागवत में दो प्रकार के तत्व है, सर्ग विसर्ग। सर्ग तत्व है मतलब ये पेट के अंदर महत तत्व, भगवान के पेट के अंदर 24 तत्व, भूमि गगनी वायु अग्नि नीर सब पड़ा हुआ। भगवान ने कहा मैं सब निकाल करके दूंगा, तुम इससे क्या करना, रचनाएं करना, सुंदर सुंदर चेहरे बनाना, पुरुष स्त्री घोड़े हाथी चूहे बंदर पेड़ पौधे 84 लाख योनियां बना देना। बोले प्रभु बना तो दूंगा, चलेगी कैसे, बैटरी भी तो चाहिए, ड्यूरासेल लगाना पड़ेगा अंदर, चलेगी कैसे। वहां बोले तेरे बस का कुछ नहीं है ब्रह्मा, ठीक है इसके लिए भी मैं देता हूं। ममेव अंशः जीव भूता जीव सनातन मनस्य स्थाने इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने करिष्यति। इस संसार को चलाने के लिए मन इंद्राणि 5 प्रकार की इंद्रियां और मन मिलाकर के इस संसार को घुमा रहे हैं। कौन? ममेव अंशः, मेरा ही अंश आत्मा। भगवान ने अपने शरीर से आत्माएं प्रकट कर दी, करोड़ों करोड़ों आत्माएं प्रकट करी और जितने भी घोड़े हाथी बनाए थे तुरंत चल पड़े। तुरंत ये नहीं हुआ, पहले बंदर था, फिर बंदर से बूढ़ा बंदर बना, फिर वो थोड़ा थोड़ा आदमी बना, फिर थोड़ा बूढ़ा आदमी बना, फिर टेढ़ा आदमी बना, फिर वनमानुष बना, फिर सीधा आदमी बना, फिर एक सिविलाइज आदमी बना। ऐसा नहीं हुआ, बंदर भी अलग था आदमी भी अलग था, ये दोनों अलग अलग है। डार्विन की थ्योरी बिल्कुल फेल हो जाती है, बिल्कुल फेल। अमेरिका वाले उसको मानते नहीं है, हिंदुस्तान वाले कुछ कुछ मानते हैं, 50% अब मानना बंद कर दिए। क्योंकि अगर बंदर से सारे आदमी बन रहे थे तो आज क्यों नहीं बनते, कुछ कुछ तो ऐसे भी दिखने चाहिए थे ना। प्रभु जी थोड़ा साइड हो जाना, 3 लाइनें बननी चाहिए दर्शन के लिए, एक जो पूरे आदमी औरत बन चुके, एक जो बंदर बंदरिया है, एक जो अभी मिड में है, कुछ आधे आदमी औरत बन गए पूछ बाकी है, ऐसे भी तो होने चाहिए। तो बीच में लिखना चाहिए था अभी परिवर्तन शुरू, परिवर्तन मध्य, परिवर्तन अंत। ऐसा तो नहीं, बंदर बंदर है, मनुष्य मनुष्य। इसका मतलब ये थ्योरी बिल्कुल फ्लॉप शो है। जसपाल पंडित जी का एक प्रोग्राम आता था, फ्लॉप शो फ्लॉप शो फ्लॉप शो, डार्विन थ्योरी फ्लॉप शो फ्लॉप शो फ्लॉप शो, बिल्कुल फ्लॉप है। इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, तो बताओ प्रूफ कर। अमेरिका ने प्रूफ नहीं किया, इससे बेकारों के बंद। हाँ अपने आप को पढ़ लेते हैं ये थ्योरी, लिख लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, नंबर आ जाते हैं, होशियार हूं मैं, ज्ञानी हूं मैं, ज्ञानी हूं मैंने बीटेक किया। तू मूर्ख है, तू मूर्ख, क्या बात का तेरे पास ज्ञान। ज्ञान होता है तो क्या होता है, विद्या ददाति विनयम, विनम्रता तो ज्ञान का पहला लक्षण है। ज्ञान के बाद अहंकार में दम दर्प पुरुष, दम दर्प में घूम रहा है वो व्यक्ति काय बात का ज्ञानी। इस सृष्टि का कारण कौन है, भगवान है, और उनको जाने बिना अहंकार व्यक्ति घूम रहा है। और इस सब चक्र के पीछे से एक छोटा सा कारण है मन। अगर आपका मन आपके वश में हो जाए तो बस सारा खेल है। मन को वश में करना है, मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मन को भगवान की सेवा में। भगवान ने गीता में एक श्लोक दो बार कहा, एक श्लोक दो बार कहा, बता सकते कौन सा श्लोक दो बार कहा, किसी चीज को भगवान ने गीता में दो बार कहा। जैसे कई बार बच्चों को बोलते ना, पढ़ ले ध्यान से पढ़ ले, कल पेपर है, फिर 4-5 घंटे बाद देखते हैं बच्चा अभी भी खेल रहा है, कहते अब तो पढ़ ले आधा दिन निकल गया, कल पेपर है। एक चीज को दो बार बोलना मतलब बहुत जरूरी बात। भगवान ने एक श्लोक को दो बार, कौन सा श्लोक, कौन बताएंगे, भक्त समाज भी बैठा है बता सकता है, एक श्लोक को दो बार कहा गीता में रिपीटेड, 700 श्लोकों में से एक श्लोक रिपीट हुआ, मतलब 699 श्लोक है गीता में, एक श्लोक रिपीट हुआ, देख के बताओ, देख लो देख लो, क्या नहीं दिखा आप लगा, जब 4 साल में दिखा देख के भय लग गया। भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरो मामेव सत्यम ते जानो प्रिय असी में। ये श्लोक भगवान ने दो बार कहा, 9वें अध्याय में भी 18वें अध्याय में। इसमें चार इंस्ट्रक्शन दिए भगवान ने, चार आदेश। आदमी कहता है ना, भगवान तो द्वापर युग में आए थे, हमारे सामने तो आते नहीं, अर्जुन के सामने आए, अब हम कैसे कहें भगवान की वाणी को, कैसे समझें। भगवान ने चार इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आप उसका आज पालन करते हैं क्या वो जरूरी काम है? समझ नहीं आ रहा है तो कहां जा रहे हैं, किसको कोई तो कहां जाएंगे, 15 मिनट की तो और है, खत्म। आप बैठी बोले मन मना, इसमें कहा मन को मना करो, क्या करो मन को मना करो, इधर उधर ना भटके, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है मन को मुझ में लगाओ, मन मना मन को मुझ में लगाओ। पहला क्या बोला, सब लोग बोलिए मन को मन मना। दूसरा बोला भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो। दूसरा क्या बोला, आज भी बोलता है ना, क्या भगवान ने कहा भक्त बनो, क्या भगवान ने बोला भक्त बनो, ये पागलपन मचा रखा तुम लोगों ने, सिर मुंडवा लिया, गले में कंठी माला पहन ली, ड्रामा मचा रखा है। देखो नेटिली क्या बोलता है, क्या बोलता है नेटिली, क्या बोलता है, बोला भगवान ने यहां बोला जी, एक बार नहीं बोला दो बार बोला, 9th chapter 18th chapter मद भक्तो मेरे भक्त बोला। भगवान की वाणी नहीं माननी, सुप्रीम कोर्ट मानता है, गीता पे हाथ करके कसम खाता हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। एक क्रिमिनल हाथ करके कसम खाता है उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं, उसके अंदर जो कहा गया है वो झूठ है। पहला कहा मेरे में मन लगाओ, दूसरा कहा मेरे भक्त, तीसरा कहा मद याजी मेरी पूजा करो। ये नहीं कहा दुर्गा देवी की पूजा करो, ये नहीं कहा गणेश जी की पूजा करो, ये नहीं कहा कि शिव जी की पूजा करो, ये नहीं कहा कि साईं बाबा की पूजा करो। भगवान ने क्या कहा, मद याजी मेरी पूजा करो। और क्या कहा मद याजी, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। इन चार में से कुछ तो करो, अगर ये चार काम में से कुछ नहीं कर सकते तो बहुत मुश्किल है जीवन में भगवान को प्राप्त, बहुत मुश्किल। फूल माला लाओगे, यहां चढ़ाओगे, दर्शन खुलेंगे, क्लास के बीच में से खड़े हो जाओगे, उठोगे, दर्शन करोगे, घर जाओगे, बोलोगे बहुत अच्छा लगा इस कौन मंदिर में दर्शन, बेनिफिट जीरो। भगवान का दर्शन आंखों से होता ही नहीं, क्योंकि अगर आंखों से भगवान मिलते तो अंधे व्यक्ति को कैसे मिलेंगे, सूरदास जी को कैसे मिलते भगवान, भगवान आंखों से तो मिलते ही नहीं, भगवान तो कानों से मिलते, कानों के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं। कीर्तन, इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा ट्रांसजेंडल वाइब्रेशन ऑफ द लॉर्ड, भगवान की जो ये दिव्य ध्वनि है ये मुंह से बोली जाती है, कानों के माध्यम से प्रवेश करती है। जब जोर जोर से आप भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं ये कान में प्रवेश करती है और पूरे हृदय को पत्थर को पवित्र कर डालती है, पूरा पवित्र कर डालती है। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग भगवान के नाम का जप करिए और इस सर्व कारण कारणम भगवान कृष्ण के बारे में जानिए, गीता का पाठ करिए और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं इधर ही हूं, अभी भगवान का दर्शन खोल रहा, दर्शन करिए। चार चीजों को याद रखिएगा, खाली दर्शन का कोई फल नहीं मिलेगा आपको, चार चीजें करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री रूप में द्वारपदी भगवान की।